बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी शिक्षाष्टक है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मुख से निसृत वाणी। चैतन्य चरितामृत के अंतलीला के अंत में अध्याय संख्या 20 अंतलीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 20 ये शिक्षाष्टक नाम से प्रसिद्ध है अध्याय। मानो ये चैतन्य चरितामृत का सारांश है। चैतन्य महाप्रभु के अपने जीवन का प्रयोजन राधा को समझना, राधा भाव का अनुभव करना, ये उनका निजी उद्देश्य था प्राकट्य के पीछे। धर्म संस्थापनार्था ये तो इसका एक्सटर्नल रीजन का, ये तो बाहरी कारण हुआ। ये रूटीन ये तो होता ही रहता है, संभवामी युगे युगे रूटीन जॉब। लेकिन मैं केवल विषय ही रहता हूँ, मुझे आश्रय बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, तो मैं स्वयं आश्रय बनूँगा, तो राधा बनूँगा और राधा के भावों को मैं अनुभव करूँगा। इस उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पहले तो उन्होंने धर्म संस्थापनार्था या कलिकालेर धर्म नाम संकीर्तन उसकी स्थापना की है। मध्य लीला जो संपन्न हो रही थी, किंतु अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु के भावों में परिवर्तन हुआ है, या जो भाव उनमें सुप्त था या गुप्त था उसको प्रकट किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हे राधार भावे एवे गौरावतार, हरि कृष्ण नाम करिला प्रचार। तो पहले तो प्रचार किए हैं और फिर राधा भाव का अनुभव जगन्नाथपुरी में वे करते रहे। ये अंतिम लीला का उन दिनों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहा करते थे। बड़ी ही गंभीर स्थली है वो। चैतन्य महाप्रभु के सारे गांभीर्य का वहाँ प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन उन्होंने जनता के समक्ष तो नहीं किया, जनता के समक्ष जनता के मध्य में तो कीर्तन करते रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन जगन्नाथपुरी में गंभीरा में अपने कुछ विशेष अंतरंग भक्तों के संगति में उन्होंने विशेष गोपनीय लीलाओं का और भावों का प्रदर्शन किया। और उन भक्तों में भी गोपनीयतम भक्त रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, जो एक है ललिता और दूसरी है विशाखा, इनके सानिध्य में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उसमें भी रात्रि के समय जो रास क्रीड़ा का भी समय होता है या माधुरी लीला का भी समय होता है, जो सर्वोपरि लीला या रस है, श्रृंगार रस माधुर्य रस, श्री जयदेव गोस्वामी जितना सारा वांग्मय है श्रृंगार रस के संबंधित या माधुर्य रस के संबंधित, उस वांग्मय मवांग्मय में या उन ग्रंथों में श्री जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद सर्वोपरि माना जाता है। चैतन्य चरितामृत को हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, ग्रेजुएशन भागवतम ये पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हृदय गोस्वामी का गीत गोविंद हो, पीएचडी का ऐसा कुछ थीसिस, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका आस्वादन करते हैं, या श्रीमद् भागवत का भी आस्वादन होता गंभीर रामायण, रामानंद राय का जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखा उसका भी आस्वादन करते हैं, फिर चंडीदास और कृष्ण करणामृत इसका भी नाम है उसे जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद और बिल मंगल ठाकुर जो उनको कृष्ण वेन्ना के तट पर प्राप्त हुआ था सातारा के पास उसको ले गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस ग्रंथ का भी आस्वादन किया करते थे राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के संग संग में और इन ग्रंथों के जो विषय वस्तु है उसके आस्वादन के साथ चैतन्य महाप्रभु अपनी खुद की रचना शिक्षाष्टक उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी राय रामानंद के साथ उनका संवाद हुआ और भी तत्ववादियों के साथ उड़पी में उन्होंने शास्त्रार्थ किया या ऐसे वाराणसी में सरस्वती प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भी संवाद हुआ चांद काजी के साथ भी और सची माता के साथ भी हुआ करता था सारोम भट्टाचार्य और पंढरपुर में श्री रंगपुरी के साथ ऐसे कुछ संवाद कुछ शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्ध है तो उन शिक्षाओं से भी परे सर्वोपरि कोई शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने जिसको हम कह सकें चैतन्य महाप्रभु की खुद की रचना है शिक्षा है तो वे है केवल ये 8 श्लोक शिक्षाष्टक भगवद गीता में जब कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने भगवद गीता सुनाई कुछ 700 श्लोक सारे तो कृष्ण नहीं कहे कितने कहे थे किसको याद है ओके तो हुआ अर्जुन के कितने हैं 81 श्लोक तो अर्जुन के है संजय के 39 धृतराष्ट्र का एक है 575 समथिंग अराउंड दैट तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु केवल 8 ही श्लोक कहे या लिखे कहे लेकिन केवल इन्हीं को उन्होंने एक बार लिख दिया और कहो कि कहाँ कि पब्लिश करो इसको अभी हो गया मेरा तो आई एम ऑथर फिनिश्ड ऐसी बात नहीं है चैतन्य महाप्रभु जैसे हम यहाँ शिक्षाष्टक में नामक अध्याय में पढ़ते हैं पूरी रात उनकी बीत जाती इज नाइट्स टेस्टिंग द मीनिंग ऑफ शिक्षाष्टक प्रेयर्स भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखते हैं एक रात में एक श्लोक का आस्वादन किया करते थे मतलब ये नहीं कि 5-10 मिनट में आस्वादन हुआ और सो गए उनको नींद ही नहीं आती स्लीपलेस नाइट स्लीप डिसऑर्डर इससे हम मैं सफ़र कर रहा था हम तो सोच रहे थे कब हम 6 घंटे कब सोएंगे हम तो 1-2 घंटे ही सो रहे हैं लेकिन महाप्रभु के लिए वो नॉर्मल था और उन्होंने कोई दवा वगैरह नहीं खोजी इतनी नींद से काम कैसे बनेगा उनकी नींद खुल जाती जब शिक्षाष्टक का एक श्लोक का वो स्मरण करते और फिर उसके गूढ़ार्थ भावार्थ को आगे कहते रहते और सुनाते रहते, उसका स्वादन करते, तो एक एक श्लोक उनको एक एक रात जगाता रहा और उसे में तल्लीन रहा करते थे। तो उन अंतिम लीला के कई वर्ष, कई वर्षों की कई रातें चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक की जो अपनी स्वयं की प्रार्थनाएं हैं उसके उच्चारण, उसके श्रवण, आगे कीर्तन, ग्लोरिफिकेशन में बिताया करते थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसे चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध किया है कितना महत्वपूर्ण है ये चैतन्य शिक्षाष्टक। और ये सारा शिक्षाष्टक वैसे हरिनाम का गौरव है, हरिनाम की गुण गाथा गाई है इन 8 श्लोकों में। कई सारी बातों का उल्लेख है, जिक्र होता है, सिद्धांत इसमें प्रकाशित है। भक्ति के प्रकार कितने हैं लिखिए, भूल गया, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो ये जो 8 श्लोक है इसके प्रारंभिक श्लोक साधना भक्ति का जिक्र करते हैं। 6वें श्लोकों तक साधना भक्ति है, 5वें तक वैसे 6वां और 7वां है भाव भक्ति, और 7वां और 8वां है प्रेम भक्ति। ओवरलैपिंग ट्रांजिशन, 6वां और 7वें भाव भी है और प्रेम भी उदित हो रहा है और पूर्ण विकसित होता है वो प्रेम जब प्रेमा भक्ति में 8वें श्लोक में। वैसे 8वां जो श्लोक है प्रेमा भक्ति कैसे उसमें उदित होती है ये समझने के लिए, ये शिक्षाष्टक जब इस अध्याय पढ़ेंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसमें एक एक श्लोक कहते हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही उस पर अपना भाष्य लिखते हैं। श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र भी लिखे और वेदांत सूत्र पर जो भाष्य है वह है भागवतम। दोनों के लेखक व्यास मुनि ही है। तो शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु की रचना है और किसी एक रात को जो विचार आए उनके मन में एक एक अष्टक के संबंध में उसमें से कुछ विचार उसमें लिखे हैं। तो मूल रचना भी चैतन्य महाप्रभु की और उस श्लोकार्थ भावार्थ भाष्य भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो 8वां जब श्लोक आता है अश्लिष्य वा पादरताम विनष्टमाम, ये लिखा किसने? चैतन्य महाप्रभु लिखे हैं, किंतु ये जो वचन है अश्लिष्य वा पादरताम विनष्टमाम, इस अष्ट शिक्षाष्टक है उसको कहते 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 जब 8वें श्लोक तक चैतन्य महाप्रभु पहुंच जाते हैं तो वह है तो वे श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, किंतु ये श्लोक जब वे कह रहे हैं तो वे कृष्ण नहीं रहे। कह तो रहे श्री कृष्ण चैतन्य लेकिन जो कह रहे हैं वो वचन तो राधा रानी के है। जो 8वां श्लोक जो है ये पूरे राधा के महाभाव में कहा हुआ वचन है और इस प्रकार उनके प्राकट्य का जो प्रयोजन था राधा भाव का स्वादन इसमें इस शिक्षाष्टक में उसकी सिद्धि है या पूर्णता है। आठवें श्लोक में राधा ही बोल रही है, वचन तो निकल रहे चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से, किंतु ये भाव है पूरा राधा का भाव। अश्लिष्य वाबाधरताम पिनष्ट माम अदर्शनात् मर्महताम करो तुवा। तो अदर्शनात् आप दर्शन दे आप या न दे, आप तो स्वतंत्र हो, किंतु मेरे प्राणनाथ तो कौन है, आप ही है या राधानाथ है, कृष्ण है, तो ये कौन कहेगा, राधा रानी कह सकती है। तो ये साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के लक्षण इस अष्टक में हैं। श्रद्धा से प्रेम तक ये सारे सोपान हैं। कौन कौन से हैं? श्रद्धा है, लिखो, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थिवृत्ति, निष्ठा, भाव प्रेम, ये सब भी इन आठ श्लोकों में हैं। पहले सोपान से श्रद्धा से लेकर प्रेमा भक्ति तक, फ्रॉम फेथ टू लव, प्रारंभ में फेथ, अंत में प्रेम, कृष्ण प्रेम, तो करस्पॉन्ड करते हैं ये श्लोक श्रद्धा, ये श्लोक साधु संग, ये भजन क्रिया वाला श्लोक। फिर जो न धनम न जनम या क्या होता होगा, अनर्थ निवृत्ति या कही जा रही है, या और ये साधना भक्ति के अंतर्गत भी आ गया, साधना भक्ति या भाव अभी तक नहीं है, साधना ही चल रही है, और अनर्थ निवृत्ति उसमें आता है। अरे भाई थोड़ा ओवरलैपिंग है, टेक्निकल भी है, थोड़ा इधर उधर हो भी जाता है। न धनम न जन्म, ये अनर्थ निवृत्ति में भी, फिर आगे फिर या मदन मोहन, राधा गोविंद और संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये भी इसमें अष्टा शिक्षाष्टक में है। संबंध अभिधेय प्रयोजन, प्रयोजन तो प्रेम है, प्रारंभ के कुछ लोग संबंध स्थापित करते हैं, और संबंध में जब हम स्थिर हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, संबंध स्थापित होते होते कई अनर्थ निवृत्ति वगैरह, भजन क्रिया, ये सब अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, स्थिर हो गए हम लोग, फिक्स्ड, और फिर ओ या तो अभिधेय असंबंध, अभिधेय गोविंद, अभिधेय बीच वाला, और अंत में प्रयोजन राधा गोपीनाथ या जीवन का लक्ष्य प्रेम। ये संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये वेदांत सूत्र से इसका संबंध है। वेदांत सूत्र में मुझे जहाँ तक स्मरण है, आधे एक सूत्र वेदांत सूत्र के संबंध को स्थापित करते हैं, फिर और सूत्र है जो अभिधेय, और सूत्र अंतिम सूत्र जो है प्रयोजन को की स्थापना करते हैं, प्रयोजन के सिद्धांत की। तो वो भागवत में भी मिलेगा आपको, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो शिक्षाष्टक में भी संबंध वाले श्लोक है, अभिधेय वाले श्लोक है, और प्रयोजन वाले श्लोक है। ये आठ श्लोक है, तो इनका भक्ति विनोद ठाकुर अष्टकालीय लीला के साथ भी इसका संबंध बताया है। अष्टकालीय लीला प्रारंभ होती है उषा काल से, उषा काल डॉन जिसको कहते हैं, डॉन सूर्योदय के पहले उषा काल, फिर प्रातः काल होता है, फिर पूर्वान्न होता है, फिर मध्यान्न होता है, मिड डे, फिर अपराह्न होता है आफ्टरनून, फिर सायंकाल होती है, फिर प्रदोष होता है और फिर रात्रि का काल होता है। हरि भाव बोरिंग अध्यान मिड डे अपराह्न पूर्वान्न मध्यान्न अपराह्न बिफोर नून नून और आफ्टरनून सायंकाल प्रदोष और रात्रि। तो इसके जो श्लोक है जैसे अष्टकालीय भजन करने वाले भी भक्त होते हैं, अष्टकालीय भजन करते हैं तो अलग अलग कालों में अलग अलग लीलाएं भगवान की होती है उसका स्मरण करते हैं। तो इन 8 श्लोकों का संबंध भी उन लीलाओं के साथ महाप्रभु की। तो ये जो प्रयोजन की जो 8वां श्लोक है वो रात्रि का है, रात्रि के समय राधा गोविंद या राधा गोपीनाथ की लीला, रास क्रीड़ा और माधुर्य लीला और राधा भाव प्रेमा भक्ति। तो 8 श्लोकों का 8 लीलाओं के अष्टकाली लीला के साथ भी संबंध स्थापित किया है। और कुछ है संबंध? छठवें तक छठवा जो हुआ दास्य अयि नंद तनुज किंकरं पतितां मां शमय भवां बुधो, वो जो है वहाँ तक संबंध है। फिर अभिधेय भक्ति में स्थित हो गए, सारे भाव प्रकट हो रहे हैं और प्रयोजन है 8वां श्लोक। जन्म न और सुंदरी कविता वा न ऐसा कामये अंत में होगा, उसे जगदीश शुरुआत में होगा। जगदीश संबोधन है, जगदीश को संबोधित किया है, हे जगदीश। धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा न कामये, कामये मतलब अहम कामये, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ। क्या क्या नहीं चाहता हूँ? धनम जनम सुंदरीम कविताम वा, हे जगदीश। और ईश्वरे इसमें ईश्वर संबोधन है, इसमें जगदीश है, इसमें ईश्वर है। त्वयि ईश्वरे, ईश्वरे त्वयि, आप में हे ईश्वर, मम मेरी, जन्मनी जन्मनी जन्म जन्मांतर के लिए। अहेतुकी पहले आएगा, अहेतुकी भक्ति भवतात, भवतात मतलब हो, भक्ति हो, कैसी भक्ति हो, अहेतुकी, अहेतुकी विशेषण है, विशेष है भक्ति, तो विशेषण पहले आएगा, अहेतुकी भक्ति और ये क्रियापद। तो धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा न कामये, हे जगदीश पहले, वै ईश्वरे मम जन्मनि जन्मनि अहेतुकी भक्तिर्भवताद। यामध्ये नाही, कधी कधी करतात, यामध्ये केला नाही। तो भक्ति विनोद ठाकुर आपके जानकारी के लिए टीका लिखे हैं, भाष्य लिखे हैं, शिक्षास्तक पर उपलब्ध भी है, आप भी प्राप्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। सन्मोदन भाष्यम, श्री सन्मोदन भाष्यम नाम का भाष्य लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और उसी भाष्य पर फिर भाष्य लिखे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी। तो ये दोनों भाष्य उपलब्ध है। पठनीय है, मननीय है, स्मरणीय है, सदैव स्मरणीय। या बंगला में, बंगला से अंग्रेजी से फिर हो सकता है, मैंने देखा नहीं। तो इस भाष्य में समझाया है वैसे चैतन्य महाप्रभु, इस श्लोक पर चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही वचन का अपना स्वयं का भाष्य कहे हैं, और वो इस प्रकार है। चैतन्य महाप्रभु को सुनते हैं पहले। धन जन नहीं मांगो कविता सुंदरी, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी, तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले ये अपना श्लोक कहा शिक्षाष्टक का, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के सानिध्य में। और उन्होंने कहा कि धन जन नहीं मांगो कविता सुंदरी, या उन्होंने या सुंदरी कविता वा, या कवि कविता सुंदरी वा नहीं कहा। वा मतलब अथवा होता है, मतलब दो होते हैं, एक कविता और दूसरा सुंदरी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कविता सुंदरी। कैसी कविता? सुंदर कविता। उसका सुंदरी स्त्री का संबंध अपने भाषा में चैतन्य महाप्रभु नहीं कहे हैं, केवल सुंदरी कविता, ब्यूटीफुल पोएट्री, मंडेन लिटरेचर की बात। ऐसे दो मीनिंग है कविता, एक सुंदरी दूसरा, और कविता सुंदरी। कविता कैसी कविता? सुंदरी कविता, एक विशेष एक विशेषण। तो सुंदर कविता या सुंदरी कविता। तो भाष्य में समझाया है कि इस शिक्षाष्टक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी थी उसके आधार पर जो भक्ति रसामृत सिंधु की रचना हुई, तो रूप गोस्वामी व्याख्या लिखे हैं, भक्ति की व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, डिवोशन व्हाट इज दैट, क्या है वो? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म। तो अभी ये जो श्लोक है उसमें यही कहा है, अन्याभिलाषिता मतलब क्या क्या यह कहा इस श्लोक में, क्या क्या कहा है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम, ये मतलब अन्याभिलाषिता। इतना ही नहीं, ये तो कर्म हुआ, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये दोनों। और ज्ञान कर्मादि भी कहा है, मतलब क्या? ज्ञान कर्म योगा अन्य जो भी है, न अन्य या अनन्य। अनन्य भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्य, अनन्य, दूसरा कुछ नहीं, केवल भक्ति, शुद्ध, प्योर, अनअलॉयड। धातु में सोने में कई क्या क्या मिलावट हो जाती है, लोहा और क्या क्या, एल्यूमिनियम ये वो हैं, तो इसको तपाते हैं और सारे धातु जलाते हैं या अलग करते हैं और बचता है प्योर गोल्ड। तो ये अन्न अभिलाषिता शून्यम, और किससे शून्य? ज्ञान कर्म योगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतः ही शांत, प्रसन्न हो गए कृष्ण भक्त। तो इसमें तो कर्म तो आपको दिखाई दिया, धनम जनम सुंदरीम कविताम, ये कर्म है, ये कर्मी है। और कर्मी भी कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। दो कौन से? वो तीन हो गए फिर, निष्काम तो कृष्ण भक्त हुआ। कर्मी ही दो प्रकार के, एक तो हुआ ईश्वर हीनता या क्या कहते हैं नास्तिक, पूरे नास्तिक, और आस्तिक वाले भी है, धार्मिक कृत्य तो करते हैं लेकिन सकाम कर्म, यज्ञ करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, या आप भूल गए, समझना होगा ऐसा। कर्मी दो प्रकार के, रूप गोस्वामी को बताए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो हुआ ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आवृतम क्या होता है? आवृत मतलब ढकना, अनावृत डिस्कवर या अनकवर। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ज्ञान कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए, मतलब ही अन्नाभिलाषिता शून्यम होना चाहिए। पहले पंक्ति में जो कहा है वही बात दूसरे पंक्ति में कही, अन्नाभिलाषिता शून्यम, मतलब ही क्या? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म से मुक्त। तो न धनम न जन्म न सुंदरीम, ये तो कर्म हुआ, और ज्ञान कहाँ छिपा उसमें? कविता भी है, और काम है तो न धनम न जन्म सुंदरीम को काम कहा है, और भी कुछ है, हाँ जन्मनी जन्मनी ईश्वरे। ज्ञानी ज्ञानियों को क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होते उनका लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति, ज्ञान का फल मुक्ति, और कर्म का फल भुक्ति। कर्म का फल भुक्ति है, ज्ञान का फल मुक्ति है, और भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति भी है, भक्ति से भक्ति, भक्ति कारण भी है, भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। तो वह ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, मतलब मुझे कर्म से मुक्त, ज्ञान से मुक्त, अनावृतम ज्ञान कर्म आदि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम मुझे। तो ये उत्तम भक्ति का लक्षण जो कहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद, वही सिद्धांत इस श्लोक में भी समझाया है। जब ध्यान से देखेंगे इस श्लोक को, द शैडो डिवोशन, जब ज्ञान है कर्म है इसे आच्छादित भक्ति है, तो उसको भक्ति आभास कहा है। जैसे नाम आभास है, नाम आभास आप जानते हो, नाम आभास, सूर्य अभी तक उदित तो नहीं हुआ, सूर्योदय के पहले जो सूर्य किरण दिखाई देते हैं वही नाम का आभास, आभास होता है, इट अपीयर्स, अभी तक स्पष्ट नहीं है, दर्शन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, लेकिन कुछ लक्षण है, प्रारंभिक लक्षण है नामाभास। तो ये भक्ति आभास कहा है, शैडो डिवोशन, जब ज्ञान और कर्म के साथ इसे ढकी हुई भक्ति। तो इस भक्ति आभास से मुक्त होके शुद्ध भक्ति की स्थापना का यह उद्देश्य है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने कमेंट्री में इस श्लोक का संबंध जोड़ते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष से। आप ढूंढ सकते हो कहाँ कहाँ धर्म है, कौन सा अर्थ है, कौन सा काम है, कौन सा मोक्ष है। अर्थ तो धनम, जो धनम है वो अर्थ है, जन्मनि जन्मनि मोक्ष। ये जो कविताम है, कविता, कविता को धर्म कह रहे हैं। जैसे कृष्ण कहे भरिस भगवत गीता, कृष्ण कहे थे भगवत गीता में, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवद्यन्ति अभिपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। तो पुष्पिताम वाचम, तो ये जो कविता है सालंकृत कविता, अलंकार सहित कविता, फ्लावरी लैंग्वेज के साथ जो कविता है, और उसमें कई भौतिक वांग्मय भी है, मंडेन लिटरेचर कहा है, या इवन वेदों के सेक्शन जिसमें कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, ये पुष्पिताम वाचम या कविताम सुंदरीम कविता। कैसी कविता? केवल सुंदर कविता है, आकृष्ट करने वाली तो, मोहित करने वाली तो है, किंतु उसमें कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, बस केवल विषय भांड, वो जहर का प्याला है या बर्तन है, लेकिन सावधान, ये तो ऐसा ही जाल है, इसे बचो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम होना चाहिए। वेदवाद रतः, तो कुछ वेदों के तथा कथित अनुयायी जो होते हैं, वेदवाद रतः, तो खूब चर्चा तो करते रहते हैं ऐसे वेदों का, कोपीन बनता खलु भाग्य बनता, वेदांत वाक्येषु सदारम अंतः। वाराणसी के वेदवाद रतः क्या कहेंगे, हम जैसा कोई भाग्यवान है नहीं, क्या हमारा भाग्य बस, हम लोग, हमारी कोई ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। कोपीन बनता, कोपीन जस्ट हम कोपीन पहनते हैं, भाग्यवान है, और क्या करते हैं, वेदांत वाक्येषु सदा रमंता, वेदांत वाक्य में हम रमते रहते हैं। तो ऐसा भाव अहम जिनमें है, ऐसे वेदवाद रतः ये तल्लीन रहते हैं पुष्पिताम वाचम या सुंदरीम कविताम, तो इसको धर्म कहा है, पुष्पिताम वाचाम या सुंदरीम कविताम को वे कह रहे हैं धर्म। और अर्थ, अर्थ तो धनम जो है, और काम को जो जन्म है इसके साथ भी काम जुड़ा हुआ है। तो जन्म मतलब केवल फॉलोअर्स और केवल गुरु को ही दोषी नहीं ठहराना, गुरु कई सारे फॉलोअर्स बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, आई डू नॉट नीड एनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, लेकिन गृहस्थों के जो पुत्र परिजन जो है, हाँ, वो कौन है, वो जन्म में आते हैं, देहापत्य कलत्रादिषु असत सैन्य, ये सारा सैन्य है। सुखदेव गोस्वामी तो इसको सैन्य कहे, काफी आर्मी खड़ी कर देते हैं हम, सो वो भी फॉलोअर्स है। तो वित्तम और पुत्रम और क्षेत्रम और कुत्तों से सावधान, कुत्ते भी है और गार्ड्स भी है और सिक्योरिटी फोर्स भी है, फ्रेंड्स है, और बहुत बड़ा सर्कल होता है, समाज है, हम इस समाज के, उस समाज के, फॉलोइंग आ गया उसमें। तो इसको भी जन्म कहा है। तो जनसंगस्य लौल्यस्य षड्भिर् भक्ति विनश्यति। तो जन्म मतलब गुरु और उनके फॉलोअर्स की बात नहीं है, या कोई वैसे अभिनेता भी होते हैं और राजनेता, हमारे देश में दो नेता प्रसिद्ध है, पॉलिटिशियंस एंड सिनेमा स्टार्स हीरोज, तो उनके जो फॉलोअर्स या साधारण व्यक्ति के भी जितने भी फॉलोअर्स है, बस उतने ही फॉलोअर्स उनको नरक में पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति आसक्त हो जाता है, ज़्यादा धन की आवश्यकता ना आसक्त होने के लिए, थोड़ा भी धन है बस, द पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पैनी कहा है, कोई गरीब व्यक्ति उसके पास कुछ दमड़िया ही है, वो आसक्त उसमें आसक्त है, पूरा उसकी आसक्ति उसी में है। अब कोई अरबपति है तो वो भी आसक्त है, 100% वो भी आसक्त है और ये 100% आसक्त है कुछ दमड़ी से, उसको गिनते रहता है बारंबार निकाल के। तो हुआ तो धनम या धनम अर्थ, अर्थ के साथ धनम और ये जन्म है, ये सब काम के साथ। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, इसको मोक्ष कहते हैं। चार पुरुषार्थ है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ कहा, प्रेम उपमार्थो महान, प्रेम उपम अर्थ महान। वैसे लक्ष्य तो है या प्रयोजन तो है या लक्ष्य तो है प्रेम उपमार्थो महान, अभी तक वह यहां पहुंचे नहीं है, ये तो साधना भक्ति चल रही है, न धनम न जन्म, ये साधना भक्ति ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा है सभी, यह हेतु का उल्लेख तो हुआ है, अभी तक ये ज्ञान ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक उसको ये बताया जा रहा है न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम। नमो अकिंचन वित्ताय, नमस्कार, किसको नमस्कार? अकिंचन वित्ताय, ये कौन है? अकिंचन के वित्त कौन है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, दमड़ी भी नहीं है, उनकी संपत्ति, उनके वित्त कौन है? कृष्ण। ऐसे अकिंचन वित्ताय कृष्णाय नमो नमः, कुंती महारानी ने कहा नमो अकिंचन वित्ताय, जिनका और कोई नहीं है उनका ऊपर वाला है या भगवान है, तो जिनका धन है उनको नमस्कार नहीं कर रही है कुंती महारानी। तो जो निर्धन है और निर्धन के जो धन है, निर्धन के जो धन है, निर्धन के धन तो भगवान है। तो वह तो यहाँ अहेतु के का उल्लेख हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति अभी तक अहेतुकी के स्तर तक नहीं पहुंचा है, उसको प्रचार किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, साधना भक्ति ही बताई जा रही है या ये लक्षण बताए जा रहे हैं। अहेतुकी भक्ति कब प्राप्त होगी? जब न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम, काम है इससे मुक्ति होगी, कर्म से मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति जब होगी तब ऐसी भक्ति हमें दे देना। भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी भक्ति हमें प्राप्त हो जिसमें ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो इस प्रकार इस श्लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला जो पुरुषार्थ माना जाता है उसको भी, उसका भी खंडन किया है, खंडन मंडन हुआ है और स्थापना हुई है अहेतुकी भक्ति या प्रेमा भक्ति की। किंचन किंचित अस्ति धनंजय, किंचित कुछ भी नहीं है इनके पास, क्योंकि जब धन होता है तो फिर का क्या होता है? धन के बाद काम होता है, धर्म अर्थ काम, अर्थ और काम का संबंध जुड़ा हुआ है। अर्थ ही नहीं फिर धन भी नहीं है, धन भी नहीं है तो अर्थ भी नहीं चाहिए, धन का उपयोग किया जा सकता है। यस यस, तो गुड क्वेश्चन। तो इसके संबंध में कमेंट्री में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, प्योर डिवोशन नेवर डिपेंड्स ऑन लिबरेशन, प्योर डिवोशन, नोट कर सकते हो, इट्स वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, प्योर डिवोशन नेवर डिपेंड्स ऑन लिबरेशन। तो शुद्ध भक्ति मुक्ति पर या मोक्ष पर निर्भर नहीं करती है। ये नहीं कि जन्मनी जन्मनीश्वरे मुझे पहले मुक्त करो और बाद में मुझे भक्ति मिले या अगले जन्मों में मुझे भक्ति मिले, निर्भर नहीं करती, मोक्ष पर निर्भर नहीं, मुक्ति पर निर्भर नहीं करती, शुद्ध भक्ति निर्भर नहीं करती मोक्ष पर, स्वतंत्र है। तो लिबरेशन मुक्ति मतलब ये शरीर त्यागने के बाद फिर अगले जन्म में या उसको मिलना ही नहीं है, फिर वो ज्योत में ज्योत मिला देगा वो, तो वो भक्ति का विरोधी ही होता है। मायावादी कृष्णा अपराधी कहते हैं, मायावादी कृष्णा अपराधी। तो केवल कृष्ण अपराधी नहीं, कृष्ण भक्ति अपराधी, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है या कृष्ण भक्ति उसका अपराधी होता है मायावादी। तो वह शत्रु है, मायावाद भक्ति का शत्रु है, कट्टर शत्रु है। तो भक्ति को उत्पन्न नहीं होने देता या क्योंकि अहम है या मैं ही ईश्वरो अहम या अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मोस्मि, ये भाव भक्ति के लिए घातक है। तो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसी जीवन में मुझे भक्ति प्राप्त हो और अगले जीवन में भी मुझे अगर जन्म मिलता तो उस समय मैं भक्ति करूं, और कोई जन्म है तो जन्म जन्मांतर के लिए भक्ति करूँ, लेकिन इस जन्म में मुझे, यानी कि मोक्ष के बाद या शरीर त्यागने के बाद मुझे भक्ति मिल जाए अभी, तो उसमें या कुलशेखर, राजा कुलशेखर का उदाहरण दे रहे हैं, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। या तो मुझे बुढ़ापे की राह नहीं देखनी है या अगले जन्म की राह नहीं देखनी है, अद्यैव आज या अब मेरा मन रूपी जो हंस है, त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, तो ये भाव छिपा हुआ है जब वे जन्मनि जन्मनीश्वरे कह रहे हैं। और अंग्रेजी में जो कॉमेंट्री उसमें ये भी आके लिखे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ए गॉडलेस प्रेयर फॉर लिबरेशन दैट वायलेट्स द प्रिसेप्ट्स ऑफ प्योर डिवोशन। व्हाट इज द यूज ऑफ ए गॉडलेस प्रेयर, तो मायावादी की जो प्रेयर है तो गॉडलेस प्रेयर, और आई एम गॉड, गॉडलेस, गॉड तो नहीं है, गॉड को प्रेयर नहीं है, मैं ये गॉड हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखे, व्हाट इज द यूज ऑफ गॉडलेस प्रेयर, और गॉडलेस प्रेयर किसके लिए, फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए गॉडलेस प्रेयर, जिसमें भगवान कृष्णहीन, कृष्ण भावनाहीन भाव, कृष्ण भावना से मुक्त, कृष्ण भावना के विपरीत या रहित जो प्रार्थना है मुक्ति के लिए, उसका क्या उपयोग है। और लिबरेशन दैट वायलेट्स द प्रिंसिपल्स और प्रिसेप्ट्स ऑफ प्योर डिवोशन, तो लिबरेशन प्योर डिवोशन या शुद्ध भक्ति का उल्लंघन करता या विरोध करता है। तो क्या उपयोग है उस प्रार्थना का जो कृष्ण रहित या कृष्ण भावना भाव रहित मुक्ति के लिए प्रार्थना हो, जो शुद्ध भक्ति का विरोध करने वाली है। फिर लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में इस बात पर जोर दे रहे हैं, किस बात पर, तो सोल्स अर्जेंट नीड फॉर भाव भक्ति, सोल की अर्जेंट नीड है, बड़ा जरूरी है। और सोल की कहा है, सोल्स अर्जेंट नीड, या बॉडी माइंड नहीं है, केवल सोल, सोल की बड़ी अर्जेंट तीव्र या अर्जेंसी, क्या कहोगे अर्जुन? हाँ तत्पर, मतलब अर्जेंट है सर, तुरंत इसी क्षण शीघ्र। ओके, अत्यावश्यक तो नहीं, अत्यावश्यक भी लेकिन अर्जेंट, मतलब रुक नहीं सकता। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्रील प्रभुपाद, पहले तो हमको इस देश को स्वतंत्र करना होगा, बाद में देखा जाएगा आपका धर्म। लेकिन चैतन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नहीं, अर्जेंट नीड। ये भक्ति और भक्ति का प्रचार किसी पॉलिटिकल सिस्टम पर निर्भर नहीं करता। अभी अंग्रेज का राज है, बाद में कांग्रेस का आएगा नहीं आएगा, जिसका भी आएगा, तो भक्ति का प्रचार रुक नहीं सकता, रोका नहीं जा सकता। अर्जेंट, महाप्रभु का संदेश अर्जेंट है, क्या शीघ्र या तुरंत या अभी अभी, अद्यैव, वही बात अद्यैव, अतिशीघ्र अतिशीघ्र। ओके, सोल्स अर्जेंट नीड फॉर भाव भक्ति। तो भाव भक्ति तक पहुंचे नहीं है, लेकिन आत्मा की जो आवश्यकता है भाव भक्ति प्रेम भक्ति, उस पर जोर दे रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में। और पुनः भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने भाष्य में एक विशेष एंगल, ये जो पंचोपासना है, पंचोपासना, पांच उपासनाएं प्रसिद्ध है, एक सूर्य है, दूसरे गणेश है, तीसरी दुर्गा या काली है, चौथे शिव है और पांचवें विष्णु है। इन पांचों के मिलके पंचोपासना कहते हैं। पंचोपासना बड़ी प्रसिद्ध बात है। सूर्य, गणेश, काली दुर्गा, काली या काली दुर्गा दोनों मिलके एक, और चौथे है शिव और पांचवे है विष्णु। तो इस श्लोक के आधार से धर्मार्थ काम मोक्ष और मटेरियली मोटिवेटेड धर्म या कोई भौतिक इच्छा के साथ की हुई भक्ति, उसको पांचवा हुआ, पांचवी बात। तो जो पांच उपासना है, कहते सूर्य उपासना का संबंध धर्म के साथ जोड़ते हैं। जो धार्मिक लोग सूर्य उपासना करते हैं, या गणेश की उपासना का अर्थ के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, अर्थ प्राप्ति के लिए। और भी कोई देवी देवता होंगे, लेकिन विघ्नहर्ता तो अर्थ प्राप्ति में कोई विघ्न है, तो गणेश का अर्थ के साथ, काली या दुर्गा का काम के साथ, और शिव जी का मोक्ष के साथ। और विष्णु की पूजा करते भी है तो वह सुख संपत्ति घर आवे, जय जगदीश हरे। तो विष्णु की कुछ आराधना तो हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? धनम देही, जन्म देही, सुंदरीम देही, देही देही, सब कुछ दे दो प्रभु, क्या लागे मेरा। अंत में ये भी कहेंगे, क्या लागे मेरा, या आपके पास क्या कमी है? आपके पास क्या कमी है? देते जाओ प्रभु। तो ये श्लोक जब अन्नाभिलाषिता शून्यम जब कहा है श्री या भक्ति की परिभाषा में या इस श्लोक में क्या कहा है, न धनम न जनम कामयी, इसकी कोई मुझे कामना नहीं है, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष और सकाम भक्ति विष्णु की भी हो सही, वो मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं चाहिए। और फिर चाहिए क्या, आपको कुछ चाहिए कि नहीं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कुछ मांगो तो सही। तो क्या मांगते हैं, हमें भक्ति प्राप्त हो, अहैतुकी भक्तिर्भवतात्, अहैतुकी भक्तिर्भवतात्, आपकी भक्ति प्राप्त हो, कैसी भक्ति, अहैतुकी भक्ति। तो भगवान की सेवा, लोग पूछते हैं भगवान की सेवा आप क्यों कर रहे हो, तो उनको क्या पूछना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो, और तो कुछ करना, जीव को और कुछ करना ही नहीं होता है, और क्या करना होता है, कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे थे, और क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। मैं जीवात्मा हूँ तो जीवात्मा क्या करेगा, जीवात्मा का तो फर्ज है, धर्म है भगवान की सेवा, तो और क्या करना चाहिए। तो जीव तो ये जीव कृष्णदास ए विश्वास कर लो तो और दुख होना है। जीव अगर भगवान की सेवा करेगा तो या समझेगा पहले कि मैं दास हूँ, रीव गौरव, तो और क्या करना चाहिए, हम जब तो इसी का अहेतु की, मतलब कोई हेतु नहीं, तो हर काम के पीछे कोई हेतु होना चाहिए। तो क्यों कर रहे हैं आप कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा तो अहेतु की होती है, क्यों का क्या मतलब है, जीव को तो भक्ति करनी होती है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतु की त्वयि। तो हम साधकों के लिए साधना भक्ति के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा बड़ी ही महत्वपूर्ण है, न धनम न जनम, जैसे हमने पहले कहा ही धनम देही, श्रील प्रभुपाद का सेंटेनियल हम लोग मना रहे थे आपको स्मरण होगा, तो हम थोड़ी उल्टी प्रार्थना कर रहे थे वहाँ मायापुर में राधा माधव से, सभी भक्तों की ओर से हमने प्रार्थना की, चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना से विपरीत ये प्रार्थना, धनम देही हमने कहा, ये राधा माधव क्या करो, धनम देही, क्योंकि लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, आपके तो कई सारी लक्ष्मियां हैं, तो उसमें से शुद्ध भक्त का शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, भक्ताना मान वर्धना, भगवान क्या करते हैं अपने भक्तों का मान को वर्धित करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद के मान सम्मान को फैलाने का कार्य तो भगवान ही करते हैं, उनके इमेज मेकर कौन होते हैं, शुद्ध भक्तों के इमेज मेकर, हर व्यक्ति का इमेज मेकर या कई मेकर्स होते हैं, पीआर डायरेक्टर्स होते हैं, कैसे नाम फैलेगा, इस हीरो का उस हीरो का, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका नाम कौन बनाए रखता है, ध्रुव महाराज कब के हुए, कोई है उनका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ध्रुव महाराज का या प्रहलाद महाराज का, तुकाराम महाराज का कौन पब्लिसिटी करता है, तुकाराम महाराज जब भी थे शायद लोग महाराष्ट्र में जानते होंगे उनको, मराठी भाषा में उन्होंने अभंग लिखे और कुछ ज़्यादा नामदेव ने भ्रमण किया, नामदेव तो पंजाब तक गए, मध्य प्रदेश और हरियाणा होते हुए गए होंगे या गुजरात होते हुए, लेकिन संत तुकाराम तो महाराष्ट्र लिमिटेड उनका, हाँ अच्छा देहू से पंढरपुर आते थे बस, और पंढरपुर से देहू जाते थे और वहाँ थोड़ा प्रचार प्रसार करते, भंडारा डोंगर वहाँ तक जाते हैं भंडारा, और पत्नी पता लगवाती थी आज कौन से डोंगर पर आज कौन से पहाड़ पर है, कान लगाती जहाँ से कई रास्ते बन जाते थे, एक रास्ता फिर इस तरफ जा रहा है इस तरफ जा रहा है इस पहाड़ की ओर जा रहा है, तो किस पहाड़ पर गए हैं तो पता लगवाने के लिए वो सुनती थी कान से, इस रास्ते पर कान लगाते थे उस रास्ते पर, जिस रास्ते से आवाज़ आता था विट्ठल विट्ठल नाम का तो उस रास्ते से जाते तो वहाँ मिल जाते उनको उनके प्रभु। तो ज़्यादा घूमे फिरे तो नहीं, लेकिन आज तुकाराम महाराज का नाम तो सर्वत्र है, मास्को में भी लोग तुकाराम महाराज का सीडी वगैरह देख रहे हैं, संत तुकाराम जो फिल्म है कई भाषा में बन चुका है। तो ये पीआर कौन करते हैं, तो भक्ताना मान वर्धना, भक्तों का मान सम्मान बढ़ाते हैं भगवान, तो श्रील प्रभुपाद का सम्मान को बढ़ाने वाले श्रील प्रभुपाद, तो जब शताब्दी मनाई जा रही थी तो धन की आवश्यकता थी और कई सारे भक्तों की आवश्यकता, बहुत बड़ी मैन पावर और मनी पावर, तो हम प्रार्थना कर रहे थे धनम देही जन्म भी देही, हमें धन दीजिए भगवान और भक्तों को भेजिए, भक्तों को प्रेरित कीजिए, बड़ी टीम मिलके हम लोग श्रील प्रभुपाद के गौरव को बढ़ाएंगे। तो हुआ तो एक ओर तो हम लोग कह रहे धनम न धनम, और दूसरी ओर हम कहते कि धनम देही, कोई कह रहे थे कि IMPA में बहुत लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो हाँ जो नहीं मांगते उन्हीं को मिल जाता है, तो इसको कैसे समझे कि वो धन कब न धनम, किसको कहा है न धनम, धन के बिना काम तो बनता नहीं, मनी वॉक्स एवरीथिंग, नो उल्टा हो गया, मनी या मनी टॉक्स एवरीथिंग वॉक्स, अगर मनी है तो फिर सब दौड़ने लगता है, सारे काम फटाफट हो जाते हैं, तो धन की तो आवश्यकता है लेकिन हमें प्रार्थना करनी पड़ती कि न धनम। यस ये एक बात हुई, और क्या है हमको, हमें कितना खाना चाहिए, हाँ युक्त आहार, और भी शब्दों में कहा है जितना आवश्यक है, जठरम ऐसा श्लोक है ना, उतना ही खाना चाहिए जितना हम लोग पाचन पचा सकते हैं, और अधिक खाएंगे तो दंडम अर्हति, ऐसे कहा है अधिक जो खाएगा, पहले तो कहा सस्तेनो, वो चोर है उसको दंडित करना चाहिए, इसका संबंध से धन के साथ भी कहा है, तो उतना ही धन लेना चाहिए जितने की, ज़्यादा अपना कीपिंग बॉडी माइंड सोल की बात है या गृहस्थ आश्रम भी है, तो जितनी आवश्यकता है जितनी नीड है, जिसको दूसरे शब्दों में ईशोपनिषद क्या कहता है, ईशावाश्यम इदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम तेन त्यक्तेन भूंजिता माग्रदा कश्य स्विद्धनम तेन त्यक्तेन, तेन मतलब उन्होंने, वे कौन है भगवान, तेन त्यक्तेन भूंजिता, उन्होंने अपने तुम्हारे लिए कोटा बना के रखा है, तुम्हारा कोटा है, उसको तुम स्वीकार करो और सुखी हो जाओ, माग्रदा डू नॉट माग्रदा कश्य स्विद्धनम, अधिक धन को छूना नहीं, लोस्टवत पर द्रव्येश विकार, तो ये तुम्हारा कोटा है, वो दूसरे का है। लोस्टवत पर द्रव्येश, वो द्रव्य वो धन तो औरों का है, छूना नहीं, मानो कूड़ा करकट है। कहना तो आसान है, श्लोक के बाद श्लोक हम कह सकते हैं, यदृशा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। भगवान कहे यदृशा लाभ संतुष्टो, उनकी इच्छा से जो प्राप्त होता है भगवान देते हैं, उस लाभ से संतुष्ट हो जाओ और द्वंद्वातीत द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, जाओ अब विमत्सरा मत्सर से रहित हो जाओ, कंपटीशन या ईर्ष्या द्वेष औरों के साथ नहीं करना, जितना प्राप्त होता है जितना आवश्यक है। तो ये तो हमारे लिए, और बाकी जो है और हम स्वयं अगर भगवान के भक्ति में हैं तो वो धन भी फिर भगवान की सेवा में तो लग गया। तो ये धनम को न धनम, धन नहीं चाहिए, या चाहिए तो अपने लिए, यदृचा लाभ संतुष्ट हो या महाग्रदा कश्यस्वी धनम, ये सारे सिद्धांत है। ये हमारे महात्मा गांधी भी कह के गए, क्या कहे, नीड ठीक है लेकिन ग्रीड ठीक नहीं है। दोनों भी अंग्रेजी शब्द है, नीड मतलब आवश्यकता, ग्रीड मतलब लोभ। नीड ठीक है, नीड इतनी नीड, आई नीड दिस, जितना भी मैं हजम कर सकता हूँ जितना, लेकिन ग्रीड, ग्रीड नहीं चाहिए, लोभ से मुक्त हो। नीड का जस्टिफिकेशन है, नीड समझी जा सकती है, लेकिन ग्रीड से सावधान, लोभ से सावधान। तो धनम, और धनम को केवल धन ही धन नहीं है, मतलब रुपए बैंक बैलेंस, केवल इसी को धन नहीं कहा है, और क्या क्या धन है। पृथ्वी को, पृथ्वी का एक नाम है, क्या नाम है, वसुंधरा कहते हैं, वसुंधरा। वसु मतलब धन या संपत्ति, समृद्धि जिसको धारण करती है वसुंधरा, वसु को संपत्ति को धारण करती है। तो एक समय तो आजकल के जो जिसको धन या रुपया टका टोका या जो भी पाउंड डॉलर्स एन ये जो करेंसीज बनी है, ये तो थी भी नहीं, लेकिन धनी लोग तो उस समय भी थे, लेकिन आजकल जिसको धन कहते हो वो धन नहीं हुआ करता था या नाप दौड़। तो किसको धन कहते हैं, ओके वेरी गुड, लिख लो, धान्य धनवान गवयो धनवान, धान्य धान्य अन्न धान्य होता है ना, अन्न धान्य धान्य धनवान, हाँ गवया, गवया मतलब गाय, जिसके पास गाय है गवड़ी वो भी धनवान, जिसके पास गाय है वो धनवान, इसके बाद धन है धान्य है वो धनवान, और कितना लैंड है कितनी जमीन है या तो धनी है, तो गाय है तो फिर खेत है और धान है, या फिर उसी से कोई घर बना है तो वो भी संपत्ति है। खनिज, खनिज द्रव्य, खनिज खन उत्खनन से निकलने वाले संपत्ति, सोना चांदी हीरे मोती जड़ जवाहर, ये कितना सारा, ये वसुंधरा पूरी खान, आजकल तो कोयले की खान, तो कोयला तो खूब निकल रहा है, उसको भी जला के, और भी संपत्ति है, वन संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति, वन वन जंगल फॉरेस्ट ट्रीज, जल भी संपत्ति है, पुत्र संपत्ति और दूसरे प्रकार की संपत्ति। तो धन मतलब, हम लोग तो धन मतलब अभी तो केवल पैसा सोचते हैं, लेकिन पैसे से क्या करोगे, जब अगर धान मिलता ही नहीं बाजार में तो क्या आग लगाओगे उसको, और उसको उबालने के लिए कुछ होगा भी नहीं, आग भी पैसे की आग लग रही, जल तो रहा है, लेकिन या अगर ठंडी के दिनों में तो आराम होगा कुछ समय के लिए। तो धनम को आजकल धारण किए हैं कई रूप, उसने क्योंकि उससे संपत्ति बनती है। और शरीर, अच्छा शरीर भी संपत्ति है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर इज लॉस्ट एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आजकल का जो धन है, जिसको धन धन कहते हैं, वो सारा लॉस भी हो जाएगा तो नथिंग इज लॉस्ट, जिसको न धनम। तो वैसे आगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये जो शिक्षाष्टक है आगे बढ़ेंगे तो आगे के श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं के भाष्य में कहा है कि भगवान मैं आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ। तो दास को तो वेतन मिलना चाहिए ना, दास को वेतन मिलता है, दास को सैलरी मिलती है। तो मैं तो आपका दास हूँ तो मुझे वेतन दीजिए, मेरी सैलरी दीजिए, ऐसी मांग कर रहे। तो और वे कह भी रहे कि कैसी सैलरी चाहिए तुमको, प्रेम धन, प्रेम धन कह रहे, मुझे प्रेम धन की सैलरी, प्रेम धन का वेतन हमको मिलना चाहिए, और कुछ नहीं देना, प्रेम धन दीजिए। मैं आपका दास हूँ तो कब से सेवा कर रहा हूँ, तो अभी सैलरी का समय आ गया तो हमको थोड़ा दे दो। तो हमारे सेवा के बदले में हमें धन दे दो। कौन सा धन? प्रेम धन हमें दे दो। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुन मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। तो धन का उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं, या जब करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा है। मुमुक्षु है, हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, ये धन तो माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो हम उस धन से दूर दौड़ेंगे। तो वो वैराग्य क्या है, कैसा है? फाल्गु, फाल्गु वैराग्य। जैसे फाल्गु नदी है गया के पास, फाल्गु नदी बड़ी विचित्र नदी है, फाल्गु नदी कहते हैं। ऊपर से तो कोई बालू ही बालू है, कोई पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंदर जाके थोड़ा गड्ढा बना दो तो नीचे से पानी बह रहा है, वाटर का करंट नीचे से प्रवाहित हो रहा है। फल्गु तो बाहर से, ऊपर से तो नदी नहीं है लगता है, ऐसे से जा रही है फल्गु। ओ, एक वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहे हैं रूप गोस्वामी, और दूसरे वैराग्य को युक्त वैराग्य। नोट करो, फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य, वैराग्य के दो प्रकार बताए, फल्गु और युक्त। तो जो मायावादी होते हैं उनका वैराग्य फल्गु होता है, और वैष्णवों का वैराग्य युक्त वैराग्य। हरि के संबंध में उपयोग होता है उसको प्रापंचिकतया बुद्धिया, वो उसको प्रापंचिक फिर वो नहीं रह जाता, तो फिर वो युक्त वैराग्य हुआ। तुम सारे संसार की संपत्ति, संसार की तो है नहीं, संसार के बाप की संपत्ति तो नहीं है, या है भी? संसार के बाप की संपत्ति है, हाँ है कि नहीं है? संसार के बाप की ये संपत्ति, लेकिन बस पहचानते नहीं बाप को, कौन बाप है। तो सारे संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सकता है, सारे संपत्ति का उपयोग। धनम, जन्म, जन्म की तो चर्चा हो गई। तो जन्म, हर एक के जन्म होते हैं, जन होते हैं, निज जन होते हैं, अपने अपने होते हैं। तो वह तो बंधनों से मुक्त होना है। छिंदी, कुंती महारानी ने कहा, पांडवों के साथ मेरा जो संबंध है उसको छिंदी मतलब तोड़ दो, या स्नेह पाश वृष्णि वंशज या पांडु पांडव पांडु के पुत्रों के साथ मेरा कोई स्नेह उसमें कोई भौतिकता है तो उसको छिंदी उससे मुक्त करो, नहीं तो शाश्वत जो संबंध है स्नेह का आत्मा और आत्मा के मध्य में शाश्वत संबंध उसको तो समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारी रिलेशनशिप केवल भगवान के साथ ही नहीं है, वी आर नॉट ओनली इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण लेकिन दास और दासानु दास लोकनाथ वो भी कहे भृत्येषु तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्येषु भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। कौन कहे? कुलशेखर, राजा कुलशेखर भी अपने एक प्रार्थना में कहे कि मुझे मेरा स्वीकार कैसे, मेरा स्वीकार करो कैसे, भृत्य भृत्य सेवक सेवक और भृत्येषु आपके भृत्य का भृत्य आपके सेवक का सेवक का सेवक सात बार कहा उन्होंने। और मुझे स्मर मुझे याद करना है प्रभु, ये मेरा परिचय है, हे लोकनाथ हे प्रभु त्रिलोकीनाथ भृत्य भृत्य भृत्येषु भृत्य तत्परिचार आपके भक्त भृत्यश्च भृत्य। तो ये जो संबंध है ये भाई आध्यात्मिक है अलौकिक है लेकिन कोई लौकिकता है ऐसे संबंध में उसका नाश हो। ऐसा जो जन्म है धनम न जन्म साधारण जनता या साधारण लोग या साधारण देहात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वधि कलत्र आदिशु स्वधि कलत्र कलत्र वाइफ आदिशु भौम्य इज्जधि और पूजा भारत माता की ये भौम्य इज्जधि हुआ। तो ये जो सारे संबंध है जन संपर्क है या जन है तेने कहिए वैष्णव जन तो पीढ़ पर आई जानी रहे। तो जो भी कोई मायवी अगर संबंध का विचार है उससे हमारा सामर्थ्य बढ़े हमारी रक्षा हो हमारा नाम हो इतने अनुयायी है इतना परिवार है इतना हम ऐसे परिवार का ऐसे वंश के हैं। पुनः कुंती महारानी ने कहा क्या कहा स्त्री जन्म चार बातें कुंती महारानी ने कही उसमें से एक है परिवार में क्या जन्म ही पहला जो है जन्म मतलब मेरा जन्म ऐसे खानदान में हुआ है। और ये सब प्रभुपाद किसी के घर पर गए थे मुंबई में इवेनिंग प्रोग्राम के लिए तो घर के मालिक प्रभुपाद को दिखा रहे थे परिवार का परिचय करा रहे थे इट्स माय वाइफ माय ब्रदर माय चिल्ड्रन माय डॉटर सन इन लॉ दिस दैट बहुत जन समुदाय वहाँ था फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट। तो प्रभुपाद तो सारा सुन लिए वहाँ तो कुछ नहीं कहे लेकिन बाद में शिष्यों से कहे एंड दिस इज माय सेक्स लाइफ दिस इज माय वाइफ दिस इज दिस वन इज इक्वल टू दिस इज माय सेक्स लाइफ। स्वामी जी देखिए ये साम्राज्य देखिए मेरा सारा एम्पायर देखिए मेरा ये सब सृष्टि देखिए मेरी जैसे कौन थे वो एक्सपर्ट दक्ष प्रजापति दक्ष 1000 फिर 10,000 एक्सपर्ट थे वे दक्ष थे। तो जन्म धनम जन्म सुंदरीम सुंदरी कई बड़ा नाम है इस संसार में कुछ लोग सुंदरी तो कुछ सुंदरिया है, वाह। तो इनसे बचना है, धनम से जनम से सुंदरी। क्या कपिल भगवान कहे मामा, क्या देखो मेरे या बलम में पश्य मायया, बलम में पश्य माया, मेरे माया का बल तो देखो। बलम पश्य में माया भ्रू विज्रम भी न केवलम, भ्रू ये भ्रुकुटी है, जब नारी या स्त्री जब भ्रुकुटी को हिलाती है नचाती है तो बड़े बड़े कौन या करोति पादाक्रांतम, आगे और एक रह गया, या करोति पादाक्रांतम भ्रू विज्रम्भेन केवलम बलम पश्य मे माया स्त्री मैया, स्त्री मैया, स्त्री मैया जयिनो दिशाम। ओके, तो कपिल भगवान ने इन शब्दों में कहा, मेरे माया का सामर्थ्य तो देखो, बल तो देखो, और किसमें, स्त्री रूप में, स्त्री रूप में मैंने जो माया का, मेरे माया का शक्ति का प्रदर्शन मैं करता हूँ। तो कहते हैं कि जई नौ दिशा में, अभी अभी कोई कई सारी दिशाओं में, दिशाओं को जीत के अभी अभी लौटे हुए सम्राट जब महल में आ जाते हैं और उनकी नारी या रानी जब भ्रुकुटी को नचाती है चलाती है, तो बड़े बड़े सम्राट दस दिशा जीतने वाले क्या करते, पादाक्रांताम उनके चरणों में गिर जाते हैं या चाटने लगते हैं उनके चरणों को या मालिश करने लगते हैं। बलम पश्यमे माया, मेरे माया का बल तो देखो, अपने माँ से ही कह रहे हैं, मेरी माया इसी बलवान है। तो स्वयं कपिल भगवान इन शब्दों में कहे है, तो स्त्री में कोई बल है पुरुष को आकर्षित करने का, आकृष्ट करने का, तो स्त्री का खुद का नहीं है, भगवान ने एम्पावर, पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, तो ऐसा कार्य करवा सकती है इस अवतार में, इनके स्त्री अवतार में। और ऐसे पुरुष आकृष्ट होते हैं तो उनको भी ऐसा अवतार लेने का अवसर मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में, बारी बारी से लेते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी स्त्री बनते हैं, और ये सब सारे योनियों में चलता है, स्त्री पुरुष का आकर्षण केवल मनुष्य जाति में नहीं है, हर योनि में ये स्त्री पुरुष है और ये मैथुन है, नथिंग स्पेशल। मनुष्य का जो आपसी आकर्षण है कोई नथिंग, हाथी और हाथीनी का या जो भी बंदर और बंदरानी, हाँ बंदरी बंदर रानी बंदर की बंदर रानी उनका कुछ काम नहीं है। हम थोड़ा मनुष्य बन गए, थोड़ा उसका बहुत कुछ साज श्रृंगार और सारा संदर्भ कॉन्टेक्स्ट बना देते हैं, लेकिन तो ये पशुवृत्ति है। वैसे जीव का कोई संबंध नहीं है, जीव का इस मैथुन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। हम उसे कुछ दिन पहले कह रहे थे, पहले भी कहे थे अभी भी, कि जो हुआ आहार भय मैथुन, क्या बच गया, आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें से आहार के बिना हम लोग जी नहीं सकते और निद्रा के बिना भी, मैंने अनुभव कर रहा था मैं जब सांस ठीक नहीं था, निद्रा के बिना भी नहीं जी सकते, और भय थोड़ा थोड़ा डिफेंस, कुछ तो अपने रक्षा के लिए, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक जो भी संकट चुनौतियाँ आ जाती है उससे रक्षा के लिए कुछ वस्त्र आश्रय कुछ कुछ हम लोग कुछ करना पड़ता है, करते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये जो मैथुन है, मैथुन के बिना जी सकते हैं, बढ़िया से जी सकते हैं, तो आहार के बिना जी नहीं सकते, मैथुन के बिना जी नहीं सकता। मंडली प्रसन्न हो गई। आहार निद्रा के बिना जी नहीं सकते, थोड़ा भय से थोड़ी थोड़ी रक्षा भी अनिवार्य होती है, लेकिन मैथुन के बिना जी सकता। एक भक्त ने तो अपने पहले एक बुक प्रकाशित किया, जॉय ऑफ नो सेक्स, उस बुक का टाइटल था जॉय ऑफ नो सेक्स। सेक्स का एक जॉय है लेकिन उससे भी सुपीरियर और परमानेंट जॉय किसमें है, ऑफ नो सेक्स, जॉय ऑफ नो सेक्स। कीर्तनानंद। तो हमारा कोई शत्रु है तो काम ही बड़ा शत्रु है, स्त्री का शत्रु है काम, पुरुष का शत्रु है काम। तो न धनम न जनम न सुंदरीम, तो इससे जब मुक्त नहीं होंगे तब तक ये अहैतुकी जो कृपा प्राप्त होनी है, सेवा प्राप्त होनी है, ये होगी नहीं। तो और फिर सुंदर कविताम, चौथी बात कविताम कहा है तो एक सुंदरी कविता, या तो अलग से सुंदरी मतलब स्त्री, वो उसकी कामना नहीं है, या कविता अलग से, वही हम लोग चर्चा कर रहे थे। यामिमाम पुष्पिताम वाचाम, ये द्वितीय अध्याय का श्लोक संख्या 42 आप नोट करो, उसको पढ़ सकते हो, बड़ा उपयोगी है। या 242 दूसरा अध्याय 42 श्लोक संख्या, इसमें पुष्पिताम वाचम वेदवाद रतः, इसका तात्पर्य भी आप पढ़ के और समझ जाओगे। तो मेंटल स्पेकुलेशन जो मनोधर्म कई सारे ऐसे धार्मिक वक्तव्य भी होते हैं, तो तालियां पीटते हैं, वाह 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 होती है, लेकिन उसमें अधिकतर ये पुष्पिताम वाचम या ये कविता वाली बात, सुंदरी कविताम या कविता ही, पोएटिक एक्सप्रेशंस और फ्लावरी लैंग्वेज, तो बाह्य आडंबर या लोग ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं अपने प्रेजेंटेशन या भाषण में, बस लोग उसी से उस चमत्कार को देख के नमस्कार करते हैं, वाह क्या क्या भाषण हुआ, बहुत भाषण, क्या कहा कोई समझ में नहीं आया। राधा गोविंद महाराज बता रहे थे ऐसा भाषण ठोका उन्होंने, ऐसा भाषण। कोई व्यक्ति आके बता रहा था क्या भाषण हुआ, क्या तो क्या क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ऊपर से चल गया। तो पुष्पिताम वाचम, उसमें कुछ सार तो कम होता है, सार सार को गही रखे थोथा देई उड़ाए, तो ज़्यादा थोथा होता है उसमें, चौथा होता है अधिक, और सार कम होता है या नहीं होता है। तो ऐसी जो बातें हैं, ऐसा जो आडंबर है, सारा जो लौकिक जो वांग्मय है, ये तो है ही सारा, ये कविताम। और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई सारी बातें लिखते हैं लिखने वाले, श्रृंगार रस पर कई लोग लिखते हैं श्रृंगार रस, लेकिन उनको भगवान का जो श्रृंगार रस माधुर्य रस उस रहस्य को समझते नहीं, उसको भी लौकिक बनाते हैं। तो ऐसी कोई सालंकृत कविता लिखने का सामर्थ्य मुझे हो न काम, ऐसी भी मेरी कामना नहीं है। और बस मुझे आपकी अहित की भक्ति अभी प्राप्त हो इस जीवन में, अगले जन्म तक मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। अगर मुझे जन्म देना चाहते हो तो अगले जन्म में भी मैं आपकी सेवा करूँगा। जन्म मतलब शरीर, हमारा अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, आत्मा आत्मा जाता है भगवान के धाम और आत्मा ही सेवा कर रहा है। आत्मा ही आत्मा के अपने हाथ पैर हिला रहा है, आत्मा की आँखों से दिव्य दृष्टि से देख रहा है या सूंघ रहा है नासिका से, दिव्य नासिका से, ऐसा भी निश्चित ही संभव है। लेकिन यहाँ जन्मनी जन्मनीश्वरे जब कहा तो इस संसार में अगर पुनः जन्म लेना है तो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन उस जन्म में भी मुझे भक्ति मिले। सोल्स अर्जेंट नीड फॉर भाव भक्ति। और ये सब कहने के पीछे का तात्पर्य संबंध तो हरि नाम से ही है। ये सारे श्लोक हरि नाम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम और न अजनी नान न अनुराग नाम नामकारी, कोई राग उत्पन्न नहीं हो रहा है ऐसा शोक करे महाप्रभु हमारी ओर से, उनको तो खूब हो रहा है अनुराग, लेकिन हमारे लिए कह रहे हैं तो कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो द्वितीय श्लोक में न अनुराग कहा और तृतीय श्लोक में क्या कहा, कीर्तनीय सदा हरि। अभी अनुराग भी नहीं था और अभी कह रहे कीर्तनीय सदा हरि, फिर बीच में क्या हुआ, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु मानिना, ये हुआ तब कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन अभी कीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन फिर आगे कह रहे कि मुझ में मेरे भक्ति में मेरे हरि नाम में, मेरा हरि नाम तो ये जो भक्ति का आभास है इससे मुझे मुक्त करो, नाम आभास से मुक्त करो। अपराध शून्य हैया लव कृष्ण नाम, तो अपराध या अनर्थ के नाम यहाँ ले रहे, न धनम जनम सुंदरीम कविताम या ज्ञान कर्म, इससे मुझे मुक्त करो, मुझे भक्ति दो। क्यों भक्ति दो, अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम मामिषमे भवाम वधो, मैं आपका ही हूँ और सदा के लिए मैं दास हूँ, कल हम थोड़ी चर्चा करेंगे उसकी। तो मुझे उठा लो अपने चरणों की धूली के कण बनाओ, तो फिर क्या होगा, नयनम गलद अश्रुधारया, ये सब तो बीच के ये जो दो श्लोक है लगता है कि इसका कोई संबंध नहीं है हरिनाम, पहले का तो स्पष्ट है, दूसरे का भी हरिनाम स्पष्ट है, तीसरे में तो कहा ही है कीर्तनी सदा हरि, चौथे पांचवे में थोड़ा लग रहा है कि यार कोई डाइवर्जन हो रहा है हरिनाम का कुछ, लेकिन पुनः आ गए फिर छठवे में, फिर नयनम गलद अश्रुधारया जब मैं आपका नाम लेता हूँ, और फिर ये हरि नाम ले लेके ऐसा भाव गोविंद विरहीन में और भाव फिर प्रेम में परिणत हुआ, तो फिर क्या असली शिवा पादरथम साधा राधा भाव या महाभाव, ये केवल भाव ही नहीं महाभाव, असली शिवा पादरथम इसमें कहा है। तो ये सारा हरि नाम का ही फल है, ये हरि नाम का ही परिणाम है, ये हरि नाम का ही गौरव है इन श्लोकों में।
जैसे साधना भक्ति, भगवत प्रेमा भक्ति, ऐसे तीन इसमें विभाजन किया है। प्रेमा भक्ति में प्रेमा भक्ति का जो भाव है, जो राधा रानी का भाव है, प्रकट किया है कि चेतन वालों ने सभी को शिक्षा स्वरूप कहा, शिक्षा उनके एजुकेट कर रहे हैं, क्या ये इस भाव को राधारणी के अलावा और भी कोई इस भाव को व्यक्त कर सकता है या इसको प्राप्त कर सकता है?
महाभाव को तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता। वेल, गोपिया है, भाव तो होगा, लेकिन जो महाभाव राधा रानी प्रकट करती है तो गोपिया भी ग्रेडेशन होगा, उसका अधिकार। हमारे तो जीव जितना भाव व्यक्त कर सकता है, अनुभव कर सकता है, स्नपनम सर्वात्मा स्नपनम, तो जीवात्मा तो इसमें गोते लगाने वाला है, नहाने वाला है। ये जो कीर्तन होगा या भाव या प्रेम है, उसमें वो गोते लगाएगा। तो जीव सूक्ष्म है तो उसके लिए एक बिंदु भी फिर सिंधु की तरह अचिंत्य भेदा भेद, उसी खजाने में से उसी प्रकार, तो वही क्वालिटी तो वही है, को भाव की क्वालिटी तो वही रहेगी, लेकिन क्वांटिटी जो राधा रानी की भाव की क्वांटिटी और फिर गोपियों की क्वांटिटी, सखियों की, फिर जो वात्सल्य भाव में भी भाव है, रस है, दास्य में है, बीच बीच में सख्य है, तो वो भी ग्रेडेशन का है ना, एक या गूढ़ है, रस है, फिर गूढ़ है, फिर मिश्री है, और मिश्री को भी फिर मैं क्या केसर और कर्पूर डाल दिया तो उसकी मिठास जैसे बढ़ती है, तो जैसे गाढ़ से प्रगाढ़ और फिर प्र प्रगाढ़ और प्र प्र प्रगाढ़ जब होगा, तो उसी के साथ ये अलग अलग भाव एवोल्यूशन। तो एक तो माधुर्य सर्वोपरि है, सब रसों के ऊपर रस, सर्व रस सार तो श्रृंगार रस है, माधुर्य रस है, और फिर गोपिया है, सखिया है, और राधा रानी है। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य जब परीक्षा किए चैतन्य महाप्रभु के भाव की, तो उन्होंने ये घोषित किया ये भाव नहीं है। साधारण जीव तो भाव को प्रदर्शित करते, लेकिन ये भाव नहीं है, ये महाभाव है। तो ये तो राधा इसकी अधिकारी है।
चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रकाश लीला दिखाई तो उनके अनेक पार्षद वहाँ पर थे, तो मैंने अलग अलग उनके संबंध में जो जो उनका स्वरूप बताया था, तो फिर वो एक एक एग्जांपल अगर साथ साथ में अलग भी तो चलेंगे राधा
समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो हम कभी रस प्राप्त होगा ना उन्नत उज्ज्वल, अल्टीमेटली हम हमारा जो भी शाश्वत संबंध है, हरि नाम का जप करते करते जब शुद्ध होंगे, हमारा मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर का भी शुद्धिकरण होगा, तो अंत में सिद्ध देह प्राप्त होगा। सिद्ध देह मतलब आध्यात्मिक जगत में जो देह है, सिद्ध देह, तो उस अवस्था में फिर हमारा भगवान से कौन सा संबंध है, भगवान के नित्य दास है या नित्य सखा है या नित्य वात्सल्य है या श्रृंगार है, तो उसके अनुसार तो हम वही बनेंगे जो हम थे या है, जीव जो भी है। तो हम कहते तो जनरली जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, लेकिन वो कृष्णेर नित्य दास है कि कृष्णेर नित्य सखा है कि कृष्णेर नित्य माता पिता है कि कृष्णेर गोपी है, तो जनरल तो है, तो सखा भी दास है और वात्सल्य जिनका है भाव वही भी कृष्ण के दास ही है, बने हैं माता पिता, बने हैं मित्र, लेकिन है तो दास, गोपियाँ भी दासियाँ तो है, दास ही तो है, लेकिन भाव अलग है, तो उनका नाम भी अलग या उनका रस भी अलग, लेकिन है तो दासी। ईश्वर एकला कृष्ण और सब भृत्य।
नाम जप से कैसे संबंधित? कीर्तन ये सदा हरि करते हैं, नियमित अगर जप साधना करते तो स्वाभाविक के जैसे सामने तरल रंगी
घन तरल
तरला नियमाक्षम विशेषण तरल रंगी क्यों स्वाभाविक यह सब प्राप्त होता है धन जन जो भक्ति में जैसे क्रमशः प्रगति होता है पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो प्रश्न ये था कि हालांकि
प्राप्त होता है क्यों प्राप्त हो रहा है? पहले तो हमारा जो यहाँ कृष्ण के कारण हो रहा है, इसको जैसे प्रभुपाद कहते कृष्ण सेज सरेंडर अंटू मी एंड द स्पिरिचुअल मास्टर से सरेंडर अंटू कृष्ण, तो एक ही बात होगी। लेकिन कृष्ण से सरेंडर अंटू मी, लेकिन उस गुरु ने कहा कि सरेंडर अंटू मी, लेकिन और मेरे और कहीं नहीं देखना, जस्ट मी, केवल मैं ही हूँ। तो उन्होंने अपना जो संबंध परंपरा के साथ या भगवान के साथ जो संबंध है वो स्वयं गुरु ही भूल गए, तो फिर सारा भौतिक ही हो गया, वो कनेक्शन ही नहीं रहा। और भगवान, हाँ हम तो नहीं कहते भगवान, लेकिन हमारे चेले कहते हमको भगवान, हमारे अनुयायी हमको भगवान कहते हैं, हम तो नहीं कहते। आई डोंट, तुम सुनते तो हो उनका मुख, तुम क्यों नहीं बंद करते? प्रभुपाद को भी कुछ सन्यासी कहने लगे थे, आप प्रभुपाद इज गॉड, प्रभुपाद इज भगवान, ऐसा प्रचार शुरू हुआ था न्यू वृंदावन में। प्रभुपाद ने बड़ा ऑब्जेक्शन लिया, बड़ी मीटिंग हुई और उन चार सन्यासियों को कुछ रिस्ट्रिक्शन रहा, तुम ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, कुछ हुआ। तो हमारे पास जो आता है धन या जान या पैस इट ऑन, अपने गुरु वे पैस ऑन करेंगे और परंपरा के माध्यम से फिर भगवान के पास पहुंचेगा। भगवान को, भगवान का ही है, तो हम हो गए, फ्री हो गए। लेकिन अपने पास ही रखेंगे, फिर अपना ही कहेंगे उसको, अपना संबंध। जहाँ तक भगवान को उपयोग तो कर सकते हैं, भगवान के नाम से धन आ रहा है तो हम बाहरी कुछ कनेक्शन ऐसा दिखा सकते हैं, आडंबर भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक तो लोगों की ठगाई के लिए लोग इसे ठग जाते हैं, थोड़ा गिमिक कर देते हैं, कुछ कर देते। तो आता तो रहेगा, यस हम लोग तो
प्रश्न ये था कि जैसे ये सब आ रहा है तो कहते हो कि न धनम न जनम, पर तो देखते कितना भक्ति में अधिक हमारा समय बीत रहा है और अधिक धनम जनम और इसका कामना बढ़ती हुई दिखाई देती है कि अधिक और धन की कामना कर रहे हैं, अधिक जन के लिए वो आसक्त हो जाते हैं।
तो धन का क्या दोष है?
इनका दोष नहीं है।
धन तो पहले भी था और अब भी था। धन की जो मात्रा है संसार में वो बड़ी घटी तो नहीं, लेकिन हमारे जो भाव है, जो अहम है या लोभ है, उसको ही तो हम मिटा सकते हैं। संसार के जो विषय है, संसार तो विषयों से बना है और भगवान ने शरीर में इंद्रिय जोड़े हैं, तो इंद्रिय और विषयों का संबंध तो घनिष्ठ संबंध है। तो ऊपर वाला मन है, बुद्धि है, इसका उपयोग करके हम लोग मन निग्रह इंद्रिय निग्रह करेंगे तो भले सारा संसार भरने दो या होने दो सारे विषयों का संसार, हम तो प्रभावित नहीं होंगे। वो अपने स्थान पर एग्जिस्ट करते हैं और इंद्रिय सवई मना कृष्ण पदार अरविंदो या ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते अगर हो रहा है आपकी इंद्रिया भी है, इंद्रियों के विषय भी है, लेकिन वो आकर्षण नहीं है या आप उसके उपभोग के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो। धन में तो संसार में धन है, तो आपके पास अगर आ रहा है तो वो संपत्ति तो भगवान की है और भगवान ने आपको उनकी सेवा के लिए भेजी है, तो उसका सारा भगवान की सेवा में उपयोग करोगे तो यू आर फ्री। जैसे वो बैंक का व्यक्ति भी कैशियर कितना सारा गिनता है, वो करोड़ों की संपत्ति को गिन लेता है या, लेकिन उसको उतनी सैलरी मिलती है जितनी एट द एंड ऑफ द मंथ 5,000, 10,000 या 20,000, उसको 10-20 कोटी नहीं मिलता है, तो उसके वो मालिक बना है, खजाना है उसके पास, ही इज़ इन चार्ज, लेकिन उतना ही लेता जितना निर्धारित किया हुआ है। तो संपत्ति तो आ रही है, तो वह 4 रोटी पहले खाते थे, अब भी कितनी खाओगे, 4 ही खाओगे, तो अधिक संपत्ति तो क्या करोगे। तो उसको अपनी समझना, सस्तेन वो चोर है, कहा ना सस्तेन हो और फिर दंडम अर्हति, वो चोर है, उसको वो दंडित करना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। इसके पास खूब सारा धन है और वो सुदामा के पास पहले तो निर्धन थे, समाज में कोई क्रेडिट नहीं था, कितना क्रेडिट था, चावल, लोग चावल ही दे रहे, वो भी मुट्ठी भर के, 5-10 किलो का भी क्रेडिट नहीं था कि 5-10 किलो का ये इसको देने चाहिए, कहीं लोन देना चाहिए, क्रेडिट था नहीं। लेकिन द्वारका होके आए तो वह फिर उनको महल हो गया उनके पास, फिर क्या उन्होंने मंगल आरती में आना छोड़ दिया क्या? पहले कुटिया में सोते थे, मल्टी स्टार कुटिया में सोते थे, सारे स्टार ही स्टार देखते, अभी तो केवल 5 स्टार ही हो गया उनका स्टार दूसरे, लेकिन उनके भक्ति में कोई कमी नहीं, उनका जो भाव, उनकी जो भक्ति, तो संपत्ति और कई थी, भगवान ने उनके उनको इंचार्ज तो बना दिया, लेकिन उसको उपभोग तो लेना प्रारंभ नहीं किया उन्होंने, उनका ईटिंग स्लीपिंग या जो भी उनका भाव तो वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे कई उदाहरण, या नमो अकिंचन वित्ताय, इतना सारा वित्त होते हुए, संपत्ति होते हुए, उनका संपत्ति तो द्वारकानाथ ही रहे, जो मुनिजन मानस हंस, तो वे मुनि और उन बस उनके मन में भगवान का स्वरूप और भगवान की लीला, हंस जैसे तालाब में तैरता है, भ्रमण करता है, तो और कई विचार, उन्होंने इसको कन्वर्ट करके मॉल बना दिया और अब इसका और संपत्ति बनाएंगे, और कुछ किया या ऐसा। फिर वो ना वो साधु थे और उनका कोपीन थी और चूहा भी था तो चूहा है तो फिर बिल्ली भी चाहिए, तो बिल्ली के लिए दूध चाहिए, तो दूध के लिए गाय चाहिए, तो गाय को गाय की रखवाली चाहिए, तो फिर वो सब आ तो गया। गोपिन की रक्षा तो हो रही थी, म्याओं म्याओं और सब, लेकिन जब गाय को रखने देखभाल करने वाली आ गई तो फिर उसको ही अपना घर वाली बना दिया और बाल बच्चे हो गए। और फिर वहाँ से वो शिफ्ट किया, बम्बई गया। पहले वन में रहता था, नदी के तट पर साधना करता था, तो मुझे ये भी चाहिए, फिर मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, फिर हो सकता है व्यक्ति उस बोझ से डूब सकता है, पुनर्मुष्य का भाव भी हो सकता है, ये सारी बातें है या ऐसे सावधान तो होना। कईयों का पतन महाप्रसाद के नाम से हम फिर खाते भी है, महाप्रसाद है, लेकिन फिर महाप्रसाद से फिर निद्रा है, यदि खाएंगे तो फिर पाचो विगम मनसा क्रोध जड और फिर काम वासना और वर्धित हो सकती है, इसका संबंध है। तो वह भी किया, इसलिए कहा अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य षड्वीर भक्ति। सावधान किया, सावधान सावधान। तो हर बात को समझना होगा, अत्याहार क्या होता है। अत्याहार मतलब केवल आहार ही नहीं, अत्याहार मतलब अक्यूमुलेशन, संग्रह करना। महात्मा गांधी भी कहे असंग्रह, ब्रह्मचर्य, पांच बातें उन्होंने कही। क्या पांच बातें? अहिंसा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य संग्रह, महात्मा गांधी का यह सूत्र है। अहिंसा सत्य अस्तेय मतलब चोरी, स्तेय अस्तेय, ब्रह्मचर्य अस्तेय चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, असंग्रह संग्रह नहीं करना। पांच बातें उन्होंने कही अपना, जो उन्होंने समराइज्ड। अहिंसा सत्य अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, स्तेय मतलब चोरी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असंग्रह मतलब जितना जरूरी है उतना ही लेना। हो गया पांच, पांच हो गए कि नहीं? अहिंसा सत्य अस्तेय अस्तेय। तो वह तो भी उपदेशामृत, ये शिक्षामृत है, शिक्षाष्टक है, वो उपदेशामृत है, उपदेशामृत।
तो उस समय हम लोग जहाँ भी अरुणाचली जाते थे, अभी जो भी चल रहा है, तो उस समय हमें जाते थे मिलते थे, अरे ऊपर भगवान के ऊपर डिपेंड रहते थे कि हो जाएगा कोई। लेकिन जिस दिन से मोबाइल आया तो ये मोबाइल के ऊपर ज़्यादा निर्भर या फिर लोगों के ऊपर निर्भर, हमारे जो डिपेंडेंस है भगवान प्रति, ये सब धनम जनम सुंदर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कम हो जाता है। ऐसा
इसको ये कहा जा सकता है, हमारा जो धर्म का सिद्धांत, हम लोग ये प्रभुपाद भी कहे सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग सादा जीवन, सरल जीवन और उच्च विचार। तो अगर उच्च विचार नहीं है तो क्या होगा? हमारा हाई लिविंग चलेगा। सिंपल लिविंग अगर मेंटेन करना है, सिंप्लिसिटी मेंटेन करनी है, तो हाई थिंकिंग बढ़ाना होगा। जितने हम हाई जाएंगे, हाई थिंकिंग हाई थिंकिंग हाई थिंकिंग हाईएस्ट थिंकिंग, ये बढ़ाना होगा हमें, तब हम सिंपल लिविंग से संतुष्ट होंगे। और हम लोग नकल भी कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल नए हैं और इतने भी संपत्ति भी आ गई, आहा ये भी आ गया, जन्म भी आ गया, सत्कार सम्मान भी होने लगा, फिर हमसे डाइजेस्ट नहीं होता वो, और ये कृष्ण से आ रहा है, कृष्ण दे रहे हैं, इसको हम भूल जाते हैं और फिर सोच लेते हैं नहीं मेरे कारण, मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं अच्छा, तो ये भाव आ जाते हैं। तो वो तो बड़ों की हम नकल करते हैं, प्रभुपाद की नकल करते हैं या गुरुजनों की नकल करते हैं, या तो हमारा विचार तो उच्च अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए सिंपल लिविंग के स्थान पर हाई लिविंग और लो थिंकिंग शुरू हो जाता है। थिंकिंग लो और लिविंग हाई, और फिर लिविंग हाई होते होते फिर नो थिंकिंग, जस्ट डू इट, बस करो, सोचना भी नहीं, पहले करो बाद में देखा जाएगा, सोचा जाएगा। यह सब मोबाइल बड़ा उसका उपयोग भी कर सकते हैं प्रभुपाद, तो कहे हम लोग तो मिसाइल्स भी उपयोग कर सकते हैं, वी कुड यूज मिसाइल्स, प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, मिसाइल जानते हो आजकल जो इतना ही नहीं, अगर भगवान के लिए उपयोग थोड़ा ज्यादा कर भी रहे हैं, वैसे वैसे स्वास्थ्य की ओर भी देखना होगा वैसे तो लोग पागल हो रहे हैं, फोन का उपयोग करते करते मेंटल हॉस्पिटल भर रहे हैं आजकल, बड़ा खतरनाक है ये, मस्तिष्क को ब्रेन कैंसर भी हो रहे हैं, कंप्यूटर से भी लोग, यस, लेकिन आजकल लोग बोल ही रहे, सभी लोग बोल ही रहे, कोई सुन तो नहीं रहा, मोबाइल से केवल बोल, जस्ट टॉक, और चीप टॉक है, सस्ते में कर दिया, टॉकिंग सस्ते में कर दिया, तो फिर सस्ता टॉक बढ़ रहा है, जिसकी ज़रूरत थी बड़ा अर्जेंट, कोई अनिवार्य है दिस दैट, वो लोग तब बोलते थे, अभी तो बोलते ही रहते, बकते ही रहते हैं, तो मतलब जो डेप्थ, जो गहराई थी सोचने की, लोग चिंतन करते थे, कॉन्टम्पलेशन होता था, ये तो कोई कर ही नहीं रहा, और इसका दुरुपयोग भी युवक भी कर रहे हैं, यंग बॉयज गर्ल्स दे आर टॉकिंग डे एंड नाइट, एंड सम ब्रह्मचारीज ऑल्सो, हमने सुना ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, फिर इनको उपयोग नहीं करने आता ऐसे फैसिलिटी, सुविधा या संपत्ति या धनम जनम, जितना हज डाइजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज तो उल्टी हो रही है, मतलब भाई बंद करो या कम करो।